हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 38-4। हेलो हेलो, नैना कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज़ सुनने के बाद भी इस उम्मीद में हेलो बोलती रही कि शायद दूसरी तरफ से कोई जवाब मिलेगा, लेकिन फिर जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसे पता चला कि कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। और ये बात समझ आते ही उसने दोबारा से तुरंत ही वो नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी साइड से उसकी कॉल रिसीव नहीं हुई। वो समझ गए कि अजय उसे इसके आगे पूरी बात नहीं बताने वाला है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली,
पता नहीं क्या हुआ है, आई होप सब ठीक हो।
इतना बोलते हुए उसने जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन में एंटरटेनमेंट न्यूज़ को सर्च किया, लेकिन उसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ से निकलकर सीधा हॉल में आई, क्योंकि पूरे बंगलों में सिर्फ हॉल में ही टीवी लगा हुआ है और किसी के भी रूम में टीवी नहीं है। नैना को इस तरह भागते हुए वहाँ हॉल की तरफ आते देखकर सारे नौकरों का ध्यान उसकी तरफ हो गया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाई हुई लग रही है। नैना भागते हुए हॉल में आई और जल्दी से ही इधर उधर देखते हुए रिमोट ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी टीवी का रिमोट नहीं मिला, तो उसने चिल्लाते हुए वहां पर काम करने वाली मेड से पूछा, रिमोट रिमोट कहाँ है टीवी का, ऑन करूँ जल्दी। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या क्या हुआ है, नैना क्यों इस तरह से हड़बड़ाई हुई सी वहां पर आकर टीवी ऑन करने की बात कर रही है, लेकिन उन लोगों ने फिलहाल नैना से कोई भी सवाल नहीं किया और रिमोट मिलते ही उस मेड ने टीवी ऑन कर दिया और टीवी ऑन होते ही नैना ने उस मेड के हाथ से रिमोट छीन लिया और फिर उसमें एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल सेट करने लगी। और जैसे ही उसने वो लगाया तो देखा उस पर बड़ी बड़ी हेडलाइन में जो न्यूज़ आ रही थी, वो देखकर नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपने पीछे रखे हुए सोफे पर धम से बैठ गई और उसकी आंखें अभी भी टीवी स्क्रीन पर ही हैं।
नहीं, ये नहीं हो सकता, अक्षत इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे, और कल रात तुम वहां गए ही क्यों, क्या मेरी वजह से ये सब। आई एम सॉरी बट क्या करूँ मैं, अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। विवान, हाँ मैं विवान को फ़ोन करती हूँ।
इतना बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन ऑन किया और उसमें विवान का नंबर डायल करने लगी। कुछ ही देर में विवान ने उसकी कॉल रिसीव कर ली और नैना उससे कॉल पर बात करने लगी। डैश डैश डैश। दूसरी तरफ मनस्वी और अनय दोनों जी आज घर पर ही थे, क्योंकि अनय को अब तक कोई भी क्लू नहीं मिला है जिस बारे में वो पता करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आज घर पर रहकर ही सारे रिकॉर्ड और सब कुछ सर्च करने की सोचकर आज वो कहीं भी नहीं गया। इसके अलावा कहीं ना कहीं वो मनस्वी की हालत देखकर आज उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसके साथ ही है और अभी वहां उसके साथ बैठा हुआ अपने काम में ही लग गया है। वहीं मनस्वी तो पहले से काफ़ी खुश और नज़र आ रही है, लेकिन बस अभी वो भी अपना लैपटॉप लेकर कॉफ़ी पीती हुई वहीं उसके सामने वाले सोफ़ा पर बैठी ही थी कि तभी मनस्वी का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और उसने जैसे ही अपना मोबाइल फ़ोन रिसीव किया, जो कुछ भी पता चला उसे सुनने के बाद वो बोली,
रियली लेकिन इतने बड़े एक्टर को बुकिंग देने से पहले किसी ने मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आधे घंटे में।
इतना बोलते हुए मनस्वी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई, वो थोड़ी सी परेशान लग रही है उसकी जो भी बात अभी मोबाइल फ़ोन पर हुई उसके बाद से। वहीं पास में ही बैठे अनय ने भी वो बातें थोड़ी बहुत सुन ली थी, इसलिए मनस्वी की उठकर खड़े होते ही अनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ है। मनस्वी थोड़ी सी परेशान थी और अनय के इस तरह से पूछने पर उसे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देखती हुई एकदम नॉर्मल अंदाज में बोली,
नहीं कुछ नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही हैंडल।
वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अनय ने एकदम नाराज़गी से उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता है मनस्वी शायद उसके पूछने पर भी उसे नहीं बताएगी, जो कुछ भी उसके पर्सनल काम की बातें होंगी, इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा। और दूसरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में मायूसी से बोला,
बस बातें करने आता है तुम्हें, और तुम्हारी बहुत सारी बातें भी झूठ रहती हैं, क्योंकि तुम मुझे कुछ भी नहीं समझती अपनी लाइफ में, किसी लायक भी।
ये बात तो उसने धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन मनस्वी ने उसकी वो बात सुन ली और कहीं ना कहीं समझ गई कि अनय को बुरा लग गया है, जबकि उसने की बात बस ऐसे ही बोली थी। उसे भी ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि ये बात इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसके लिए वो अनय को भी परेशान करे, लेकिन तभी उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि हमेशा वो इसी तरह से उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर देती है और वो समझता है कि उसकी मनस्वी की लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो उसे हर चीज़ में शामिल नहीं करती है। ये बात समझ आते ही मनस्वी तुरंत उसके सामने उसका हाथ पकड़कर बैठ गई और बहुत ही आराम से बोली, सॉरी अनय, प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, और वो अभी रूबी का फ़ोन आया था, मेरी असिस्टेंट, जानती हो ना तुम उसे। मनस्वी के इस बात पर अनय ने हल्के से अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर हल्के से अपना सिर हिलाया, तो मनस्वी बोली, हाँ तो उसने मुझे अभी फ़ोन करके बताया, वहाँ पर थोड़ा सा मैटर हो गया है किसी एक्टर से रिलेटेड और वहाँ काफ़ी मीडिया भी आई हुई है, चलो हमें देखना होगा। इतना बोलते हुए उसने अनय को अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया,
तो अनय के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। और जो कुछ वो अभी तक सर्च कर रहा था वो सब कुछ वैसे ही छोड़कर अपना लैपटॉप उसने साइड में रख दिया। उसने मनस्वी से बोला, हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया। इतना बोलकर वो वहां से सीधा रूम की तरफ ही चला गया, शायद कुछ लेने के लिए वहां से गया था। और मनस्वी भी तब तक जाने के लिए पूरा रेडी होने लगी है। जैसे ही वो वहां से निकल कर आया, वो दोनों ही मनस्वी की कार में बैठकर वहां से सीधा होटल के लिए निकल गए हैं। डैश 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 सिंघानिया इंडस्ट्रीज ऑफिस। आज पूरे 1 महीने के बाद सुनैना और आदित्य वहां ऑफिस आए हैं और सुनैना को वहां पर आकर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां ऑफिस के सारे ही लोग काफी सपोर्टिव हैं और उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करते हैं। आखिर करेंगे भी क्यों नहीं, सुनैना वहां की मालकिन है। और इसके अलावा वो सभी जानते हैं कि आदित्य उसे लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, इसलिए कोई भी सुनैना से जरा सी भी बदतमीजी नहीं करता। सभी उसका पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी सारी छोटी छोटी चीजों और जरूरतों का भी, साथ ही उसे काम की सारी चीजें समझाने और बताने में भी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सुनैना को वहां पर काफी अच्छा फील होता है। सुनैना आदित्य के साथ उसकी केबिन में बैठी हुई कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी, तभी उसकी नजर एक पेपर पर पड़ी और उस पेपर को गौर से देखते हुए उसने आदित्य से कहा, ये देखो आदि, हमारे इतने दिनों तक ऑफिस न आने का नतीजा हमारे इस वाले होटल के शेयर की वैल्यू कितनी कम हो गई है। और डिमांड थी, पिछले 1 महीने में यहाँ पर उतने गेस्ट नहीं आए जितने की पहले आते थे, और इसका कुछ रीजन भी साफ मेंशन नहीं है। इन लोगों के साथ थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बर्ताव करने की जरूरत है। देखो ये सब, कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करता तुम्हारे बिना।
सुनैना ने काफी ज्यादा सीरियस होते हुए ये बात बोली। तो सुनैना की बात सुनकर वहाँ आसपास खड़े रवि और शिवानी ने एक दूसरे का मुंह देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि सुनैना जिस तरह से इन सारी छोटी छोटी चीजों पर भी गौर कर रही है और गलतियां निकाल रही है, तो शायद बात उन पर भी आ सकती है। और ये सोचकर और दोनों का डर के मारे जैसे गला ही सूख गया। आदित्य ने उसके हाथ से वो पेपर से लेकर एक नज़र देखते हुए कहा, अरे कहाँ से, 3% ही तो एंगेजमेंट कम हुई है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे प्रॉफिट पर। आदित्य ने इस बात को बहुत ही हल्के में लेते हुए कहा। तो ये सुनकर वहां पर खड़े रवि और शिवानी दोनों ने ही कुछ हद तक राहत की सांस ली। आदित्य की इस तरह लापरवाही भरी बात सुनकर सुनैना ने कहा, आदि तुम्हें पता है ना हमारे सारे होटल यहाँ शहर के नंबर 1 होटल में आते हैं, तो फिर 3% भी कम होना बहुत बड़ी बात है। पता है इससे पूरे ओवरऑल बिजनेस हमारी होटल सिंघानिया इंडस्ट्रीज की रेप्यूटेशन पर फर्क पड़ेगा ना, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए तुम इन सबसे इस बारे में पूछो कि मेन रीजन मेंशन क्यों नहीं है, क्या स्टाफ में कमी है या फिर कुछ और, क्या है जो गेस्ट को अब वहां पर आने के लिए इनवाइट नहीं कर रहा। सुनैना ने काफी ज्यादा सीरियस होते हुए ये सवाल किया और आदित्य फिर से उसकी बात उसी तरह से मुंह बनाकर कुछ बोलने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सुनैना इतनी सी बातों को लेकर स्ट्रेस ले और उसके सिर में दर्द हो, क्योंकि जब ऐसा कुछ उसके सिर में दर्द होता है तो फिर उसके बाद किसी को भी पता नहीं होता कि उसकी मेमोरी अब उसकी लाइफ के कौन से स्टेज पर जाकर रुकेगी। बस इसीलिए आदित्य उसे किसी भी चीज के बारे में सोचने को लेकर मना करता है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं अभी वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही रवि बीच में बोला, मैम एक्चुअली वो रीजन है, उस होटल के सामने ही एक और नया मॉडर्न और काफी शानदार होटल ओपन हुआ है, उनके प्राइसिंग भी काफी कम है और अभी नया है तो उन्होंने अपना प्रमोशन करने के लिए कई सारे ऑफर्स रखे हुए हैं और शायद इस वजह से ही ये हुआ है। ये बात शायद अभी तक आदित्य को भी नहीं पता थी, इसलिए रवि ने जैसे ही ये बात बोली तो आदित्य ने उसके बात सुनकर तुरंत ही पूछा, कहाँ, कौन सा नया होटल और मुझे क्यों नहीं पता था किस बारे में कुछ भी। इस बार आदित्य ने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, तो रवि बोला, सर वो मैंने आपको सब कुछ मेल किया था, शायद आपने चेक नहीं किया। इतना बोलकर रवि ने उसे उस बारे में याद दिलाया। तो आदित्य ने कहा, रवि मैंने तुमसे बोला है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे अलग से भी बता दिया करो, क्योंकि कभी कभी मैं सारे मेल चेक नहीं कर पाता और इन दिनों तो तुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। आदित्य की बात सुनकर रवि थोड़ी सी धीमी आवाज़ में अपना सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी सर, बट पहले मुझे लगा था कि ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसीलिए मैंने इसे अलग से मेंशन नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। रवि ने तुरंत ही अपनी गलती मानते हुए सॉरी बोल दिया। तो फिर आदित्य ने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता है कि रवि भी सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग और भरोसेमंद एम्प्लॉय है जो अपना काम अच्छे से करता है, और आदित्य को आज तक उसने शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया है, इसीलिए आदित्य भी उस पर काफ़ी भरोसा करता है। क्रमशः